Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Kaksatvam Najanami Kidrishosi Maheshwarah Yadrishosi Mahadeva Tadrishaya Namo Nama Yo Asau Soaham Yajami Om Tat Sat Brahmane Namaha Jagratadi Trayonmuktam Jagratadi Mayam Tatha Omkare Samsamvedyam Yapadam Tannamamyaham. Mandukya Upanishad 12 mantron mein us Brahm ko jise Sat kehte hain batlane ka prayatan kiya gaya. वो सत हमारे अनुभव में आए, इसलिए जिन चीजों का हमें अनुभव है उसी का सहारा लेकर उस सत को समझाने का प्रयत्न किया गया. जागना, सोना, सपन देखना, ये हमारा अनुभव है. हर एक के जीवन में ये घटित होते हैं. हर एक को इस बात का अनुभव है, सोने का भी, जागने का भी और स्वप्न देखने का भी. इसके माध्यम से परम सत्य को, जिसे ब्रह्म कहा गया, जिससे सभी की उत्पत्ति स्थिति और जिसमें सभी का विलय है, अर्थात जो कुछ भी प्रपंच, जो कुछ भी हमें नजर आता है, जो कुछ भी हमें महसूस होता है, जो कुछ भी हमारे अनुभव में आता है, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, ये सब जिसमें कल्पित है. अर्थात ये जो हमारे अनुभव में आता है, जो हम सोचते हैं और जिन चीजों से हमारा परिचय है, जिनको हम जानते हैं, उनमें से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो रहने वाली हो. सब जाने वाली है. तो जाने वाली वस्तुओं को ही कल्पित कहते हैं, तो वास्तविक नहीं है, कल्पित. लेकिन जिसमें ये कल्पित है वो सत्य है. उसको आम बोलचाल की भाषा में आधार कहते हैं, अभिधान भी कहते हैं और शास्त्रीय भाषा में उसको अधिष्ठान कहते हैं. अधिष्ठान सत्य है, बाकी सब उसमें अध्यस्त है. अध्यस्त परिवर्तनशील होता है, कभी होता है कभी नहीं होता, इसलिए उसको असत कहते हैं. जो व्यक्ति अध्यस्त को ही सत्य मान लेता है वो दुखी हो. दुख सुख सारे अध्यस्त की सत्यता में छुपे हुए. अर्थात प्रपंच, जो कुछ भी हमें नजर आता है, पंचभूतों से बना हुआ, पंच इंद्रियों के माध्यम से जाना हुआ, पंच कर्म इंद्रियों के माध्यम से पकड़ा हुआ, वो सब प्रपंच कहलाता है. और ये प्रपंच अध्यस्त है. अध्यस्त का मतलब होता है कि इसका अधिष्ठान कोई और, ये सत्य नहीं. अध्यस्त उसको कहते हैं जो किसी और की सत्ता से सत्तावान हो. जैसे अगर लाइट जल रही है, बल्ब जल रहे हैं, तो इनमें बल्बों की अपनी ताकत नहीं, ये पर प्रकाशय है। इसमें जो रोशनी है वो बिजली की वजह से, इसलिए इनकी अपनी सत्ता नहीं है। ऐसे ही जिनकी अपनी सत्ता ना हो और हम उसको सत्तावान मान लें, तो इसको कहते हैं अध्यास को ही सत्य मान लिया। अध्यास तो अधिष्ठान की वजह से सत्य जैसा प्रतीत हो रहा है, सत्य जैसा भासता है। सत्य है नहीं, सत्य जैसा भासता। जब तक हम उसको ही सत्य मानेंगे, तब तक किसी भी तरह से ना तो हम भौतिक दृष्टि से सुखी रह सकते हैं, ना ही हम आधिदैवक दृष्टि से प्रसन्न रह सकते हैं, और ना ही आध्यात्मिक दृष्टि से आनंदमय जीवन जी सकते हैं। पूरी इस प्रक्रिया को जानने या समझने के लिए जो आधार है, जो मुख्य है, जो मेन है, जो असली, अगर हमारी नजर उस पर रहे तो फिर सारी बातें समझने में भी सुगम है, और जिसे छोड़ना है उसे छोड़ना भी आसान हो जाता है, और जिसे अपनाना है वो स्वतः जीवन में अपनाया जाता है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। संपूर्ण प्रपंच का जो अधिष्ठान है, जो सत्य है, उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म एक शब्द है, वो शब्द बना लिया गया बात शुरू करने के लिए, को कहीं ना कहीं से तो शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे तो कोई ना कोई तो आधार चाहिए ना, जहां से बात आगे बढ़ाए। अगर कोई आधार ही नहीं होगा, अगर कोई केंद्र ही नहीं होगा, तो सर्कल नहीं बनेगा। एक केंद्र बिंदु निर्धारित करके फिर हम एक सर्कल बना सकते। तो एक शब्द बना लिया गया ब्रह्म। ब्रह्म से पहले कुछ नहीं था, बस इसलिए ब्रह्म ये शब्द बनाया गया कि यहां से हमने कथा या अपना चिंतन शुरू करना। हम आज जहां तक भी पहुंचे हैं, हम आज का मतलब है कि पूरी मानव जाति, पूरी सभ्यता, ये पूरा विश्व जो कभी नहीं था, प्रलय में नहीं होता, फिर बनता है, और फिर इसमें जो लोग इतिहास की दृष्टि से देखते हैं वो जानते हैं पहले प्राग ऐतिहासिक युग था, फिर पाषाण युग रहा, फिर लोह युग रहा, फिर लोग जंगलों में कैसे नंगे घूमते थे, फिर उसके बाद कपड़े बने, घर बने, मकान बने, करते करते आज जहां हम पहुंचे। ये सारी यात्रा जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की उन्नति की यात्रा है, अर्थात जंगलों में से उठकर गगनचुंबी इमारतों तक पहुंच जाना, जब कपड़े भी नहीं पहनना आते थे या पता ही नहीं था कपड़ों का, वहां से उठकर आज के फैंसी ड्रेसों तक पहुंच जाना, ये सारी यात्रा सुख की तलाश है। ये जितनी भी उन्नति हुई जीवन को सुखी बनाने के लिए, ये सब खोजे हुए, सब प्रयत्न हुए, सब आगे से आगे हम बढ़ते। अगर इस पूरी यात्रा को बहुत ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि इस यात्रा के साथ ही साथ सुख बड़े हो या ना बड़े हो, लेकिन परेशानियां ज्यों की त्यों, समस्या जिनका हल ढूंढना था वो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई। आधी काल में या बहुत शुरू में जब आदमी बना ऐसा कह लो, तो आदमी को परेशानी थी मौत की कि मर जाना है एक दिन, परेशानी थी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और स्वार्थ की कि इससे सभी दुखी हैं, इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, मौत से कैसे बचा जा सकता है, और ये जो जीवन को परेशान करने वाली आदि व्याधि उपाधियां हैं इनसे कैसे बचा जाए, बीमारियों से कैसे बचे, शारीरिक बीमारियां भी हैं मानसिक बीमारियां भी, इसी की खोज में इसी की तलाश में ये सारी यात्रा शुरू हुई। और अंत में ये देखा गया कि कितनी भी उन्नति हो गई हो, कितनी भी सुख सुविधाएं हो गई हो, लेकिन आधारभूत जो दुख थे आदमी के वो वैसे के वैसे ही रहे। मौत आज भी वैसे ही है जैसे पहले लोग मरते थे, आज भी मरते। ऐसा नहीं है कि अब बहुत उन्नति कर ली है तो अब लोग मर नहीं रहे। काम क्रोध लोभ अहंकार ये वैसे के वैसे ही हैं जैसे तब थे, और यही हमें दुखी करते हैं। इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, उसी के सारे प्रयत्न, भौतिक विज्ञान भी उसी के लिए है, अध्यात्म विद्या भी उसी के लिए है, जो कुछ भी हम करते हैं ये मुख्य रूप से उसी के लिए ही है। ऋषियों का अनुभव ये कहता है कि जहां से हमने यात्रा शुरू की थी अर्थात ब्रह्म से, हम कहते हैं सब कुछ ब्रह्म से ही बना, तो ब्रह्म में तो कोई दुख तकलीफ थी नहीं, ना उसमें मौत है ना उसमें काम क्रोध है ना उसमें कोई और परेशानी की बात। तो जब हर चीज उसी से ही बनी या वो ही हर चीज बना हुआ है, तो फिर ये जो परेशानियां जो हम समझ रहे हैं परेशानियां, ये कहां से आई? अगर ये मूल धातु में नहीं है, जो असली चीज है जिससे सब कुछ ये बना, उसमें अगर ये बुराइयां नहीं है, तो फिर उसकी बनी हुई चीजों में से वो बुराइयां कहां से आ गई? अगर चीनी शुगर खांड मीठी है और उससे हम कुछ बनाएं और वो कड़वा निकले, तो ये तो फिर सिद्धांत बात समझ में आई नहीं कि हम कहें भी ये कि ये चीनी से बनी, माने भी इस बात को, और साथ में हम ये कहें कि ये कड़वी भी है। कहें भी हम इस बात से हम इनकार भी ना करें, ये भी कहें कि ये चीनी खांड की ही बनी, और उसको खाकर भी स्वयं हम ही ये बात कहें कि ये कड़वी है, तो इसका अर्थ है कि कहीं हमारी बुद्धि में ही नुक्स है, या तो खांड को समझने में हमने गलती कर ली, नीम को खांड समझ बैठे थे, और या फिर अगर वो खांड ही है तो हमें कोई बीमारी है जिससे मीठा जुबान पर पहुंचते ही कड़वा बन जाता है। इन दोनों में से कोई ना कोई बात है, नहीं तो सिद्धांत गलत नहीं होगा। तो इसलिए या तो हमें मूल तत्व पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि उसको कहीं समझने में गलती ना हो गई हो, और दूसरा अपने पर भी विचार करना चाहिए कि हमें कोई रोग ना हो गया हो, उसका उपचार करने से हम ठीक बात को पकड़ लेंगे, ठीक जगह पर पहुंच जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे संदर्भ में बात ध्यान में रखने लायक केवल इतनी ही है कि मूल तत्व जहां से भी ये कहानी शुरू होती है उसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म से पहले कुछ नहीं था और कभी कोई ऐसा समय नहीं आया जिस समय ब्रह्म ना हो, अर्थात वो ही था, जब भी था, जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था। ऐसा नहीं है कि उसके कोई बनने की डेट हम बतला सकें कि कब से ब्रह्म बना और कब फिर आगे दुनिया शुरू हुई, क्योंकि उसके बनने की कोई तारीख नहीं बतला सकते, इसलिए उसको अनादि कह दिया गया। उसका आदि नहीं है, कुछ दिन नहीं बतला पाए, बस वो है, वो है, उसमें था और होगा ये कल्पित है, वो है के रूप में ही है, मतलब हर समय है। उसके लिए ये कहा जाए कि वो कहीं आगे कुछ होगा या वो पहले था अब नहीं है, ऐसा नहीं। शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि होगा और था, अर्थात भूत और भविष्य, उसमें कल्पित है, वो वर्तमान है, हमेशा रहता ही। भूत और भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। भूतकाल किसे कहते हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कब से भूतकाल शुरू हुआ और भविष्य कब से शुरू होगा, अगर कोई एक पॉइंट बनाना पड़े, कोई एक रेखा खींचनी पड़े कि ये है, या एक टाइम बतलाना पड़े कि इतने बजकर इतने मिनट से भविष्य शुरू हो जाएगा और इतने बज के इतने सेकंड से भूत शुरू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जहां इनका कोई इस ढंग से ना समझ पाओ उसे कहते हैं कल्पित। कल्पित का मतलब होता है कि वो सब एक जैसे नहीं है। ये एक जैसे नहीं है का अभिप्राय ये है कि जैसे आज यहां पर जो भी तारीख है अमेरिका में वो नहीं है, एक दिन आगे पीछे, यहां छह होगी तो वहां आठ होगी, किसी जगह नौ होगी, किसी जगह दो है। पूरे विश्व का अगर आप लें तो इसमें कोई एकता नहीं, एकता नहीं है, इसलिए ये सत्य नहीं है, ये सत्य में कल्पित है, ऐसा कह लेते। तो बात जो असली हर समय ध्यान रखने की है वो ये है कि तत्व एक ही है, उस तत्व का नाम ब्रह्म है। तत्व शब्द का अर्थ होता है जिसके बिना कुछ कोई चीज रह न सके, कुछ भी ना हो, किसी की जिसमें सत्ता ही ना। उस तत्व की, उस ब्रह्म की एक शक्ति है, उसको माया कहते हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। वेदांत वाले अपने ढंग से उसको समझाएंगे और भक्ति वाले दूसरे ढंग से इस बात को कहेंगे। कोई इसको अभेदा आभेद कहेंगे, कोई इसको अभेद सहिष्णु भेद कहेंगे, दोनों में भेद तो है लेकिन ना होने के बराबर। भेद नहीं भी है अर्थात शक्ति और शक्तिमान एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अगर कोई शक्ति है तो किसी न किसी में शक्ति होगी तो उसी को शक्तिमान कहे, और अगर कोई है तो उसमें कोई ना कोई शक्ति होगी, नहीं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं। आचार्यों ने जिन्होंने ईश्वर को रस रूप माना, हमने ब्रह्म कहा, कुछ इसको रस कह लेते हैं, शब्द उन्होंने रस रख लिए। जो ब्रह्म कहेगा, ब्रह्म का मतलब होता है अनंत अनादि, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है और सर्वव्यापक है, वृहद है, ऐसे ऐसे उसको समझाए। जो उसको रस कह लेगा, बातें वो भी सब कुछ उसी में वही करेगा कि वो सब जगह है, उसी से सब की उत्पत्ति है, सब उसी में ही है, लेकिन रस शब्द कहते ही साथ में अनुभव या अनुभूति का एहसास होता है कि रस का अनुभव हो सकता है, रस को समझाया नहीं जा सकता। जब हम ब्रह्म कहेंगे तो इससे एहसास कुछ नहीं होता, ब्रह्म कहने से ऐसा नहीं लगता कि इसका अनुभव होगा, इसको सुन के ही ऐसा लगता है कि इसको शायद समझा या समझाया जा सकता है। इसीलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र शुरू हो गया, आओ ब्रह्म की व्याख्या करें। तो जहां व्याख्या आदि शब्द आ जाएंगे इसका अर्थ होता है कि उसको समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। जहां ब्रह्म की जगह रस शब्द हम कह लेंगे वहां समझने समझाने का किस्सा खत्म हो जाता है, तो बात आती है कि ये अनुभव की कोई बात है, कोई इसका अनुभव किया जा सकता है क्योंकि उससे हम परिचित हैं। तो ये जो ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति, बात ये थी कि एक ब्रह्म है, दूसरी उसकी शक्ति है, शक्ति को माया कहते हैं। इन दोनों का आपस में संबंध इस तरह का है जैसे दीपक की लौ और दीपक की प्रभा। देखो दीपक जल रहा हो तो एक तो उसकी लौ है जो सामने वो है, एक उसकी प्रभा है जो पूरे कमरे में फैली हुई। प्रभा और लौ में क्या संबंध है ये व्याख्या करनी मुश्किल हो जाएगी। ये निश्चित है कि एक के बिना दूसरे का जीवन नहीं, लेकिन ये भी सच है कि लौ में गर्मी है, प्रभा में गर्मी नहीं। लौ को हाथ लगाओगे जल जाएगा, प्रभा जलाएगी नहीं। अब भेद भी है और भेद नहीं भी है। जब ब्रह्म को और माया को समझने का प्रयत्न करेंगे तो कुछ इसी तरह की बात ध्यान में रखनी होगी। भेद होते हुए भी अभेद है, ना इनको अलग कह सकते हैं क्योंकि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। लौ नहीं होगी तो प्रभा का कोई अर्थ ही नहीं, और लौ हो और प्रभा ना हो यह संभव नहीं। ब्रह्म हो और माया न हो ये संभव नहीं है। वो कार्यरत है या नहीं है ये एक दूसरी बात, और केवल माया हो ब्रह्म न हो ये भी बात नहीं। तो एक ही तत्व, इसीलिए बहुत सारी श्रुतियां ये आई कि एक ही दो होकर भास रहा है, अर्थात रोशनी तो एक ही है, जब उसको देखेंगे तो लौ और प्रभा की तरह दो बातें नजर आ सकती। वो भी समझने समझाने के लिए, चिंतन के लिए हम उनको दो करके आगे बढ़ते। तो ब्रह्म और माया, यहां से सारी बात शुरू होगी। जब समझाने के लिए आते हैं तो ब्रह्म का लक्षण किया तो सत्य चित आनंद, तीन शब्द एक ही जगह, अब तीन शब्द बन गए। जब माया को समझाने की बात की तो अविद्या, काम और कर्म, ये तीन शब्द इसके लिए बन गए। अविद्या, काम और कर्म का क्षेत्र माया का क्षेत्र, सत्य चित आनंद का पूरा क्षेत्र ब्रह्म का क्षेत्र। सत्य चित आनंद में रहेंगे तो ब्रह्म में, अविद्या, काम, कर्म में रहेंगे तो माया में। सत्य चित आनंद की व्याख्या करेंगे तो ब्रह्म की ओर बढ़ेंगे। विद्या, अविद्या, काम, कर्म, इनकी व्याख्या करेंगे तो माया की ओर बढ़ेंगे। फिर सत्य को जब लेंगे तो केवल सत्य की ही व्याख्या जितनी भी करते चले जाएं को खत्म नहीं होगा कि ये व्यवहारिक सत्य है, ये प्रातिभासिक सत्य है, ये पारमार्थिक सत्य है, ये परम सत्य। ऐसे ही चित्त की व्याख्या करोगे तो वो भी ये द्वैत है, ये अद्वैत है, ये विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, ये सब चेतन की व्याख्या है चित्त। आनंद की व्याख्या करेंगे तो वो भी है, ये आनंद है, ये सुख है, ये प्रसन्नता है, ये खुशी है, ये मोह है, ये आसक्ति है, ये व्यसन है, ये सब आनंद के ही भेद है। किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के वो सब आनंद से ही जुड़े हुए। तो जितना जितना उनकी व्याख्या करते जाएंगे उतना उतना हम ब्रह्म से हट के माया में फंसते चले जाएंगे। ये बड़ी इसकी एक विचित्र बात, जितना जितना प्रभा की व्याख्या करोगे उतना उतना लौ को हाथ लग ही जाएगा, जलने की तरफ चल पड़ेगा।